मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 14 जनवरी 2016 है और आज के इस एकेडमी फॉर एक्सीलेंस के afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों इसी के साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अभी फरवरी में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, उसमें दाखिला लिया है। इन साथियों के नाम हैं क्रांतिवीर सिंह, आप रीवा से हैं, नीतू आप चंडीगढ़ से हैं, राजवीर सिंह आप दिल्ली से हैं और जैनेन्द्र शुक्ला आप झारखंड से हैं। तो क्रांतिवीर, नीतू, राजवीर और जैनेन्द्र आप चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों दिन बहुत अब कम रह गए हैं, आज 14 जनवरी है और 28 फरवरी को हम सब एक दूसरे के आमने सामने होंगे और फिर लगातार 15 दिनों तक 90 घंटे से भी अधिक वक्त हम लेंगे केवल इस बात की चर्चा करने में कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कैसे की जानी चाहिए। दोस्तों सुनने में ये बहुत अजीब सी बात लगती है कि आखिर में 90 घंटे ऐसी क्या बातें होंगी कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या सचमुच इसके लिए इतने समय की जरूरत है। बिल्कुल मित्रों, सिविल सर्विस परीक्षा का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी तैयारी कैसे की जाती है। और अगर आपको मालूम हो गया कि तैयारी कैसे की जाती है तो तैयारी करने के लायक तो आप हैं ही, चलना आपको आता है, बस रास्ता शायद पता नहीं है। रास्ता आप जानते हैं लेकिन सिविल सर्विस का रास्ता थोड़ा सा डिफरेंट है और 90 घंटों तक हम इसी रास्ते को संवारेंगे, सजाएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और इस पर चलना सीखेंगे। तो मित्रों बहुत ही व्यग्रता से मैं आप सबके आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, एकेडमी की तरफ से आप सब का को आमंत्रित कर रहा हूं। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मैडम के पास कुछ फोन आ रहे हैं जिसमें वे जानना चाहते हैं कि सर हमेशा कहते हैं कि अपने को खाली करो, अपने को इसके योग्य बनाओ, तो इसका क्या मतलब है। मित्रों आप लोगों की जिज्ञासा, आप लोगों का यह प्रश्न बिल्कुल सही है, मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा और रुक जाइए, जैसे ही सब कुछ फाइनल हो जाएगा, क्लास का पूरा बैच फाइनल हो जाएगा, वैसे ही मैं इन सब के बारे में आप लोगों को बकायदे इंस्ट्रक्शन दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि शुरुआत यहीं से होनी है कि आप अपनी पात्रता बनाकर आए, हाथ में बड़े बड़े पात्र लेकर आए जिसमें ज्यादा से ज्यादा डाला जा सके। तो थोड़ा सा धैर्य रखें, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों अब हम लोग आते हैं लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से पर। अनुकूलता के बारे में मैं पिछले लगभग 2-3 एपिसोड से चर्चा कर रहा हूं और मुझे यकीन है कि काफी कुछ इसके बारे में जो मूलभूत बातें होती हैं, जो जानकारी होती है, वो आप लोगों की समझ में आ चुकी होंगी। एक बात यहां मैं और विशेष रूप से कहना चाहूंगा दोस्तों कि जो जिंदगी है वो ज्ञान नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह कि हम अगर किसी चीज को जान लेते हैं तो कभी भी हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी, कभी भी नहीं। सच पूछिए तो जिंदगी जानने के बाद उसको अपनाने में है। जब तक हम उस ज्ञान को व्यवहार में नहीं लाते तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना जानते हैं। आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, सागर कितना मेरे पास है, मेरे मन में फिर भी प्यास है। प्यास बुझाने के लिए सागर में उतरना पड़ेगा, सागर से चुल्लू भर पानी लेना पड़ेगा और केवल लेने से ही बात नहीं बनेगी, उस चुल्लू भर पानी को मुंह में लेकर के गिटकना भी पड़ेगा, यानी कि अपने अंदर उस जल को उतारना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं वह जल प्यास को बुझाएगी। तो मित्रों जितनी भी बातें इस ऑडियो में की जाती हैं, चाहे वो लाइफ मैनेजमेंट के बारे में हो या फिर बाद में सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में हो, आप देखते हैं कि जो सेकेंड पार्ट होता है, जो न्यूज से रिलेटेड पार्ट होता है, जिसमें हम AIR न्यूज की चर्चा करते हैं, जिसमें हम लोग आपस में अखबारों के न्यूज की चर्चा करते हैं, तो ये मैं जिस तरीके से आप लोगों के सामने चीजें रखता हूं वो मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं आपको उससे ज्ञान प्राप्त करने का तरीका बता रहा हूं, तो इसको आप लोग विशेष ध्यान में रखें। मेरी बातों को यदि आप याद करेंगे और सोचेंगे कि ये सीधे सीधे सिविल सर्विस की परीक्षा में आपके काम आ जाएगा, तो ये इत्तफाक होगा। और उसका परसेंटेज कितना होगा, इस इत्तफाक का भी परसेंटेज इतना हाई नहीं होगा कि आप बिल्कुल सेलेक्ट ही हो जाएंगे। हां, यदि आप इस बताए हुए तरीकों को पकड़कर और आगे चलने लगे तो डेफिनेटली फिर आप देखेंगे कि आप सफल होंगे, फिर वह इत्तफाक नहीं होगा। तो मित्रों, लाइफ मैनेजमेंट में जितनी भी बातें की जाती हैं, प्लीज आप सब उसे बहुत ही व्यावहारिक रूप में लें। दोस्तों, मैं अनुकूलता की बात कर रहा था, आज मैं उसी अनुकूलता का एक विलोम होता है प्रतिकूलता, उसकी थोड़ी सी बात करने जा रहा हूं। और मैं पहले से आपको सतर्क कर दूं, आप अपने मन में इसको लेकर के कोई भी भ्रम मत पालिएगा, कोई भी शक मत रखिएगा कि कल तक तो सर अनुकूलता की बात कर रहे थे और आज प्रतिकूलता की बात कर रहे हैं, ये क्या बात हुई। दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं मित्रों, एक ही सिक्के के पहलू। लेकिन डेफिनेटली जब आप हवा के विरुद्ध चलते हैं, जब आप धारा के विरुद्ध तैरते हैं, तो ऊर्जा का ज्यादा हाश होता है, ऊर्जा ज्यादा लगती है, ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है, खतरे ज्यादा होते हैं और सफलताओं की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। इसके बावजूद लोग जानबूझकर अपने लिए प्रतिकूलता का रास्ता चुनते हैं, प्रतिकूल जाते हैं। तेन सिंह नोरके ने कभी सोचा होगा कि अगर मैं एवरेस्ट पर पहुंचूंगा तो हो सकता है कि मैं खत्म हो जाऊं, पहुंच ही ना पाऊं, रास्ते में मर जाऊं, कुछ भी सोचा होगा। पहुंचने की तो बहुत थोड़ी सी उम्मीद होगी बस, लेकिन उन्होंने उस प्रतिकूलता के रास्ते को अपनाया। क्या जरूरत थी उस पहाड़ पर चढ़ने की, और वो भी बर्फ से ढकी हुई चोटियों पर चढ़ने की। कोई वहां मकान नहीं बनाना है, कोई रास्ता नहीं बनाना है, कोई टूरिज्म डेवलप नहीं होना है, वहां कोई ऐसी जड़ी बूटी संजीवनी टाइप की नहीं थी कि उसको अगर लेकर के नीचे वो आ जाते तो उससे उनको करोड़ों रुपए मिल जाते या कोई मानव जीवन का ही बहुत बड़ा कल्याण हो जाता, कुछ भी तो नहीं था। तो फिर उस आदमी ने क्यों जबरदस्ती बेवजह इस प्रतिकूलता के रास्ते को अख्तियार किया, क्यों चुना, क्या मिला? चलिए, इनको तो मिल गया, कम से कम आज हम उनके नाम को जान रहे हैं, इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया है, पूरा का पूरा एक अध्याय में तेनजिंग नोरके हैं। लेकिन उनका क्या, जो उनसे पहले कई बार जिन्होंने कोशिश की और नहीं पहुंच पाए, यहां तक तेनजिंग नोरके भी पहली बार कहां पहुंच पाए थे, वो तो कई साल के गैप के बाद फिर से वो तैयारी से आए और फिर वो वहां तक पहुंचे। तो मित्रों, ये जो प्रतिकूलता का रास्ता होता है, ये क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा यहां स्पष्ट कर दूं कि जो प्रतिकूलता का रास्ता होता है ये दो तरह का होता है। एक तो ये है कि हम बिना जाने बूझे ही प्रतिकूलता का रास्ता अपना लेते हैं, हमको मालूम ही नहीं है। जब हम बिना जाने बूझे विपरीत रास्ता अपनाते हैं, या कह लीजिए कि गलत रास्ता अपनाते हैं, तो याद रखिए कि हम उसे सही ही समझ रहे हैं, वो प्रतिकूल है लेकिन हमें मालूम नहीं है कि वो प्रतिकूल है। और यदि आपको मालूम है कि प्रतिकूल है और आपने जानबूझकर उसे चुना है, तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसका क्या असर होगा, मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसका असर होगा कि आपकी जो शक्तियां हैं, जो आपकी आंतरिक शक्तियां हैं, चाहे वो फिजिकल एनर्जी हो, फिजिकल पावर हो, चाहे वो मेंटल एनर्जी हो, मेंटल पावर हो, चाहे वो इमोशनल एनर्जी हो, भावनात्मक ऊर्जा हो, या फिर आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी हो, आध्यात्मिक ऊर्जा हो, आध्यात्मिक शक्ति हो, इन सबको संकेत मिल जाता है कि नहीं, ये जो व्यक्ति है ये बहुत ही खतरनाक किस्म का आदमी है, इसने जानबूझकर खतरे मोल लिए हैं, इसको अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है, ये जो आदमी है ये जबरदस्त रूप से आत्मविश्वास से भरा हुआ आदमी है, इसका जवाब नहीं। और जब इन चारों के चारों ऊर्जा के चैनल्स को ये संकेत मिलता है, ये ऑर्डर मिलता है, जैसे कि कमांडर आदेश देता है अपने सेना को, उसी तरह से जब आपकी जो आपके जो डिसीजंस हैं, आपका जो उद्देश्य है, इनको ये आदेश देता है, तो ये चारों की चारों शक्तियां एक बहुत ही मुस्तैद सैनिक की तरह अड़कर खड़ी हो जाती हैं और फिर वो हर खतरे का मुकाबला करने के लिए आपको ऊर्जा सप्लाई करती है, आपका साथ देती है। और ऐसी स्थितियों में जो प्रतिकूल रास्ता होता है वो सीधे सीधे फिर प्रतिकूल नहीं रह जाता, कुछ लोग तो मित्रों ऐसे होते हैं जो प्रतिकूल में ही अपनी अनुकूलता ढूंढते हैं, उनको अनुकूलता जैसी कोई बात लगती ही नहीं। वो लोग होते हैं कि जो जहां चले जाते हैं उसी को अपने अनुकूल बना लेते हैं, या कह लीजिए कि जो प्रतिकूलता है वो अपने आप ही अनुकूलता में बदल जाती है। यही मानव जीवन है। आप देखिए कि मनुष्य में कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी क्षमता है। आदमी के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या हैं? मैदान, नदी का किनारा हो, थोड़ी सी जमीन हो, उपजाऊ जमीन हो, बड़े आराम से वो अपना जीवन यापन कर सकता है। लेकिन आदमी, आप बताइए कि ऐसी कौन सी जगह है जहां आदमी नामक एनिमल, कह लीजिए पशु जीव, न पाया जाता हो। मैं इस बात की अक्सर अपने चर्चाओं में अक्सर उल्लेख करता हूं कि आदमी ही एकमात्र ऐसा जीव है जो पहाड़, नदी, तालाब के किनारे और रेगिस्तान में और आपके बर्फीले प्रदेशों में हर जगह पाया जाता है। वो जानबूझ करके प्रतिकूलता में गया होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी बात होती है, वो ये होती है कि अभी जो चीज हमें प्रतिकूल लग रही है, कुछ समय के बाद वही चीज हमें अनुकूल लगने लगती है। आप सोच कर देखिए मित्रों, मुझे अपना गांव याद आता है। आज से लगभग आप कह लीजिए कि 50 साल पुराना गांव, 1965 और 70 का मेरा गांव, प्यारा सा छोटा सा, असुविधाओं से भरपूर प्यारा गांव। मैं जानबूझकर कह रहा हूं असुविधाओं से भरपूर प्यारा गांव। सुविधा तो सच पूछिए तो थी ही नहीं। जो भी जिन्हें हम आज सुविधा कहते हैं उसका तो नामो निशान ही नहीं था। लेकिन कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता था कि कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि जिंदगी में असुविधाएं ही नहीं महसूस होती थी। यानी कि वो जितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां थी वही अनुकूल थी। और इसके बाद शहर, और शहर के बाद दिल्ली, और बड़ी बड़ी यात्राएं, और बड़े बड़े जगह और मकान और सारी चीजों रहने के बावजूद वो प्रतिकूल गांव ही सबसे ज्यादा याद आता था। और आज भी वो प्रतिकूल गांव ही सबसे ज्यादा याद आता है। क्यों? क्योंकि उस प्रतिकूलता को ही हमने अनुकूल समझ लिया था, या कह लीजिए कि उस प्रतिकूलता को ही दिमाग ने अनुकूलता में कन्वर्ट कर दिया था। मित्रों, जानबूझ करके मैंने ये प्रतिकूलता की बात कही है, वो इसलिए कि अभी आप सब मान लीजिए सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी नए उद्देश्य में लग रहे हैं, आपने एक नया बिजनेस शुरू कर लिया है, आपने और कुछ नए जगह नौकरी कर ली है, आप सब उससे थोड़े बहुत परेशानी महसूस करने लगेंगे। नया शहर है, मन नहीं लग रहा है, नई नौकरी है, अच्छा नहीं लग रहा है, नौकरी से मन उचाट हो रहा है, सिविल सर्विस की तैयारी में लगे हैं, कुछ दिन तो जोश रहता है, फिर बाद में पता लगता है कि यार पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। मैडम के पास इस तरह के बहुत फोन आते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। ये देखिए, सीधी सी बात है कि अभी आप प्रतिकूलता की स्थिति में गए हैं। जो आपके अनुकूल था उसको छोड़ करके आपने प्रतिकूलता में एंट्री ली है, एंटर किया है। आप उम्मीद नहीं आपको तुरंत करना चाहिए कि आपका मन लग जाएगा, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन विश्वास रखिए, ये जीवन का नियम है, जगत का भी नियम है, प्रकृति आपके साथ है कि कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि वही प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल चुकी होगी। आप फिर उसके इतने आदी हो जाएंगे कि अगर आप पुरानी सिचुएशन में जाना चाहेंगे तो वह आपको प्रतिकूल लगने लगेगा। तो दोस्तों, जो मैंने अभी शुरू में बात कही, इसके लिए जरूरी होता है हिम्मत रखना, धैर्य रखना और आत्मविश्वास को बनाए रखना। छोटी छोटी प्रतिकूलताओं को इतना अपने ऊपर हावी होने की इजाजत मत दीजिए कि वे आपको वहां से विमुख कर दें। उनको इस बात की हिदायत दीजिए कि प्रतिकूलताएं कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूं और तुमको इस बात के लिए लाचार कर दूंगा, विवश कर दूंगा कि तुम मेरे लिए अनुकूल सिद्ध हो, और ऐसा होगा। तो मित्रों, लाइफ मैनेजमेंट के इस चरण के बाद अब मैं आता हूं आकाशवाणी के समाचार के विश्लेषण पर। दोस्तों, जो सबसे बड़ी खबर कल के आकाशवाणी के समाचार में थी वो थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आपको ध्यान होगा कि लगभग 3-4 दिन पहले न्यूज में ये हिंट आया था कि सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है। मैंने थोड़ी सी चर्चा उस दिन इसकी की थी और उम्मीद ही थी कि ये काम अब हो जाएगा। इस पर मैं थोड़ी सी विस्तार से आज आप लोगों से बातें करना चाहूंगा। और इससे पहले कि मैं इस पर बातें करूं, मैं अपने फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच और थर्ड बैच के स्टूडेंट्स को याद दिलाना चाहूंगा, खासकर थर्ड बैच के स्टूडेंट्स को नहीं, क्योंकि थर्ड बैच के स्टूडेंट्स को वो ऑडियो प्रोवाइड अभी नहीं किए गए हैं, लेकिन फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि मैंने भारत की जो पूरी की पूरी कृषि व्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था है, उस पर उन्हें एक स्पेशल ऑडियो प्रोवाइड किया था। और इसके बाद फिर हमारा जो एग्रीकल्चरल फील्ड है, पूरा का पूरा हमारे कृषि का जो क्षेत्र है, उस पर उनको स्पेशल ऑडियो प्रोवाइड किया गया था। और बाद में फिर जो फसल बीमा योजना हमारे यहां है, उसको लेकर मैंने ऑडियो प्रोवाइड किया था। और आप लोगों को ध्यान भी शायद होगा, नहीं होगा तो आप क्वेश्चन वाले सेक्शन में चले जाएं, जहां मैं साप्ताहिक क्वेश्चंस देता हूं। वीकली क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन मैंने दिया है कि सब हमारे यहां मतलब मानसून की हमेशा संकट रहते हैं, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, तो कृषि व्यवस्था पर तो लगातार संकट आते रहेंगे, तो भारत को अब इस कृषि संकट से निपटने के लिए कौन से स्थायी उपाय करने चाहिए, इस पर मैंने स्पेशली एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया है। आप उसमें जाएं और देखें तो आपको यह क्वेश्चन मिल जाएगा। यह जो स्थायी उपाय की जो मैंने बात कही थी, सच पूछे तो फसल बीमा योजना से ही संबंधित थी, और इसका उल्लेख मैंने स्पेशल ऑडियो में किया है, खासकर किया है। और चीन और अमेरिका में जो फसल बीमा योजना की पद्धति है, उसको लेकर किया है। और मैंने इन दोनों देशों को जानबूझकर चुना था फ्रेंड्स, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जो डेवलप्ड कंट्री है, रिच कंट्री है। उसने फसल बीमा योजना के लिए किस तरीके से अपने किसानों को कितने सस्ते दर पर फसल बीमा प्रोवाइड करा रहा है, एक इतना धनी राष्ट्र होने के बावजूद। दूसरी तरफ चीन है, हमारे समानांतर है, उसकी बहुत सी समस्याएं हमारे जैसी, वहां भी पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां भी टेक्नोलॉजी उतनी हाई नहीं है, तब है ठीक है लेकिन उतनी हाई नहीं है, वो भी एशिया का ही देश है, अभी वो डेवलपिंग के दौर से गुजर रहा है। ये एक डिफरेंट किस्म का कंट्री है जिसमें हम अपनी तस्वीर देख सकते हैं या चाइना भारत की तस्वीर देख सकता है। एक ही बेसिक अंतर है चाइना और भारत में, जब हम तुलना करें तो हमेशा हमारे दिमाग में ये बात रहनी चाहिए, वो ये कि वहां वो कम्युनिस्ट कंट्री है और हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। नो डाउट कि कम्युनिस्ट कंट्री जो है ना ज्यादातर शक्ति के आधार पर चलता है, वहां जनता को उतने अधिकार नहीं होते, तो वहां किसी भी चीज को लागू करना, नियंत्रण में रखना आसान होता है। लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी भी चीज पर नियंत्रण रखना, उसे लागू करना उतना ही कठिन हो जाता है। तो यह एक बहुत बड़ा अंतर है। इसके बावजूद एक डेवलपिंग कंट्री है, वो किस तरह की इकोनॉमी पॉलिसी को लेकर के चल रहा है, तो भारत उससे अपनी तुलना कर सकता है। खासकर इसीलिए मैंने यूएसए और चाइना, इन दो देशों की फसल बीमा योजना की बात की थी। मित्रों, आपको भारतीय कृषि व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, और पिछले खासकर 10 सालों में आप देख रहे हैं, लिबरलाइजेशन के दौर के बाद तो यह कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है कि लगातार सालों किसानों की आत्महत्याओं की खबरें आ रही हैं। उसका कारण जो सुनने में आता है ज्यादातर मामलों में, वो यही है कि किसान कर्ज में फंस चुका है, और कर्ज में इसलिए फंसा है क्योंकि अब जो खेती का जो काम है, जो कृषि है, वो एक लागत पर आधारित हो गई है। उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, खाद के लिए पैसा चाहिए, उन्नत किस्म के बीजों के लिए पैसा चाहिए, पेस्टिसाइड्स के लिए पैसा चाहिए, तो किसान ऋण लेता है, फसल नष्ट हो जाती है। नष्ट होने के बहुत से कारण हैं, कभी पता लगा कि वर्षा नहीं हुई तो फसल नष्ट हो गई, खत्म हो गई, हुई ही नहीं, नष्ट क्या होगी, हुई ही नहीं। हमारे पास सिंचाई के साधन, आपको मालूम है कि अभी तक आजादी के हम 70 साल में लगभग पहुंचने वाले हैं और हमारे पास अभी भी केवल 46% लैंड हमारी सिंचित है। ये मैं आंकड़े इसलिए आपको दे रहा हूं कि कुछ ऐसे आंकड़े होते हैं जो आपकी जुबान पर बिल्कुल बस जाने चाहिए, जैसे भाषा आपकी जुबान पर बस जाती है, कुछ आंकड़े हमारे देश के जो बहुत बेसिक डेटा हैं वो आपकी जुबान पर बस जाने चाहिए। सिंचित जमीन नहीं है, नतीजा ये होता है कि उनकी फसल नहीं हो पाती और वो कर्ज में फंस जाते हैं। कभी बाढ़ आ गई तो फसल नष्ट हो गई, कभी सूखा पड़ गया तो नष्ट होती ही होती है, कभी पता लगा कीड़े मकोड़े लग गए, जैसे भी पंजाब में आप देखिए कि कितनी ज्यादा फसल नष्ट हुई, उसकी वजह से नष्ट हो गए, कभी ओला पड़ा तो नष्ट हो गया। हजारों कारण है फसल के नष्ट होने के, और फिर किसान देखता रह जाता है। मार्जिन उतना वो नहीं रह गया है कि वो पिछले 3-4 साल से जो उसने अर्न किया होगा उसको देकर वो अपने कर्ज को पटा ले, ऐसा नहीं हो पाता। नतीजा ये होता है कि वो आत्महत्याओं की तरफ बढ़ता है। हमारे सामने दोस्तों आंकड़े हैं, नेशनल जो सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है उसके हमारे पास आंकड़े हैं कि डेली लगभग 2500 किसान खेती के काम को छोड़ रहे हैं, ढाई हजार किसान डेली, सोच करके देखिए। इसलिए क्योंकि खेती का काम उनके लिए फायदे का सौदा नहीं रह गया है, जो लागत होती है और जो उससे अर्निंग होती है उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है। केवल यही नहीं, केवल प्रकृति ही नहीं, दूसरे भी और ऐसे बहुत से रीजन हैं जो किसानों पर लगातार एक जबरदस्त किस्म का दबाव बनाए हुए हैं। जैसे हम एक मंडियों को लेते हैं, मंडियों के टैक्स और उस सिस्टम को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार लगातार दबाव डाल रही, राज्यों से रिक्वेस्ट कर रही, दबाव तो नहीं कहना चाहिए, राज्यों से अनुरोध कर रही है, और फिर अब राष्ट्रीय कृषि उपज मंडी तैयार भी किया जा रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरह। तो जो किसान है वो अपने अनाज को मंडी में बेचने के लिए मजबूर है, अपने उत्पाद को वहां बेचते हैं, और पता लगता है कि मंडी के लाइसेंस जिन लोगों के पास है वो आपस में समझौता करके किसानों से लेते कुछ में है और आगे किसी रेट में प्रोवाइड करते हैं। खासकर वेजिटेबल्स का जो फील्ड है, जो उद्यानिकी का फील्ड है, वानिकी का फील्ड है, उसमें तो यह हालत बहुत ही खराब है। मतलब आप कल्पना करके देखिए कि जो 5 रुपए किलो जो करेला खरीदा जाता है किसानों से उनके खेत पर जाकर के, मार्केट में आकर के वो 40 से 50 रुपए किलो बिकता है। आखिर में इतनी लागत बढ़ती क्यों है? क्या ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेज इतने ज्यादा हो जाते हैं? क्या स्टोरेज के चार्जेज इतने ज्यादा हो जाते हैं? ऐसा नहीं है, केवल मार्जिन, प्रॉफिट। पर यह किसी भी पूंजीवादी देश, पूंजीवादी समाज की या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा संकट होता है मार्जिन। वो बहुत हाई प्रॉफिट पर वो काम करते हैं, किसान उससे लगातार दबता चला जा रहा है, और 2500 किसान डेली, आप कल्पना करके देखिए कि खेती का काम छोड़ रहे हैं। भारत जैसे देश में जहां आज भी हमारी 2/3 पॉपुलेशन, 57% तो है ही है, 57% पॉपुलेशन आज भी कृषि पर आधारित है, हमारे उद्योग का कितना बड़ा हिस्सा कृषि पर आधारित है, इसके बावजूद भारत, ये दुर्भाग्य की बात है कि कृषि के मामले में ऐसा कुछ विशेष नहीं कर पाया है कि किसानों को मदद मिल सके। मित्रों, इसलिए न्यूज में आपने सुना होगा कि इसको ऐतिहासिक घटना बताया जा रहा है, आजादी के बाद के सबसे हिस्टोरिकल, खासकर किसानों के हित के दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम। और सच पूछे तो मैं इसे इसी रूप में मानता हूं, और हो सकता है कि सिविल सर्विस परीक्षा में क्वेश्चन भी इसी रूप में पूछा जाए कि किस मायने में ऐतिहासिक है, क्यों आप ऐतिहासिक मान रहे हैं। फसल बीमा योजना इससे पहले भी थी, यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन आप फिर से अगर आंकड़ों पर जाएंगे, एनएसओ के आंकड़े जो 2014 में उसने दिए थे, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि गेहूं के मामले में 2% और धान के मामले में 5% किसान केवल ऐसे हैं जो बीमा कराते हैं, जिनको बीमा के बारे में जानकारी है। व्हाट अबाउट द 95% फार्मर्स, उनको मालूम ही नहीं है कि वो बीमा क्या होता है। अगर मालूम भी है तो उनको खेती इतनी थोड़ी थोड़ी है कि वो बीमा नहीं करा सकते, और अगर कराते भी हैं तो बीमा की दर इतनी अधिक है, उनको लगता है कि इससे कोई फायदा नहीं। और मजेदार बात है कि अगर वो बीमा की दर में भी करा लें तो पता लगेगा कि जब मुआवजे की बात आएगी, बीमा की राशि की भुगतान की बात आएगी, तो मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड है, सर्वे होगा और फलाना होगा और मूल्यांकन होगा और फिर वो पास होगा और फिर वो पैसा कैसा मिलेगा, तो किसान सोचता है कि भैया इस बवाल से बचने के लिए रहने दो, अपना काम धंधा करो। ये सारी रिपोर्ट्स में है। मतलब हिंदुस्तान जैसा देश जिसकी 2/3 पॉपुलेशन, अब तो खैर 57% रह गई, कृषि पर आधारित शुरू में रही होगी, अगर वहां आप सोच करके देखिए कि फसल बीमा योजना इतनी बुरी स्थिति में है, तो यह साफ समझ में आता है कि इस दिशा में कभी भी बहुत संवेदनशील होकर के तंत्र ने इसके बारे में सोचा नहीं है, और उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। तो मित्रों, निश्चित रूप से ये एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लिया गया बहुत ही हिस्टोरिकल डिसीजन है, और इसके बारे में आपको जहां जहां जो भी तथ्य मिलते हैं उन्हें आप नोट करते जाएं, और इसके लिए आप सब अपने रजिस्टर में अलग से पृष्ठ निर्धारित कर लें। जो सबसे जो मेजर फीचर्स हैं जो खासकर न्यूज में आई हैं, जिनको आपको ध्यान में रखना होगा, वो आप नोट करते जाए, मतलब आप इसी एंगल से नोट करते जाएंगे। एक तो यह है कि इसमें आपदा की जो डेफिनेशन है वो अलग तरीके से की गई है, कैलेमिटी, किस तरीके से फसल के नष्ट होने पर आपको बीमा मिलेगा, बीमा की राशि, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपदा की परिभाषा क्या है। पहले दूसरी थी और अब बदल दी गई है, अब वो ज्यादा प्रैक्टिकल बना दी गई है। सच पूछे तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है अब एकदम ही व्यावहारिक है और किसानों के पक्ष में है, लेकिन इसकी भी आलोचनाएं होंगी, समीक्षाएं होंगी, वो आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आपको दोनों तरफ की बातें लेकर के और फिर अपना व्यू डेवलप करना है। जैसे आपदा की एक बड़ी खूबसूरत परिभाषा दी गई जो मुझे खासकर बहुत पसंद आई, वो ये कि आपने फसल काट ली, आप लोग अगर तो खेतों में देखते होंगे, चाहे धान की फसल हो या गेहूं की फसल हो जो हाथ से काटी जाती हैं, या अगर थ्रेशर से भी कट रहा है, मशीन से भी अगर वो फसल कट रही है, तो फसल कट के फिर खेत में ही कुछ समय तक रखी रहती है, 5-7-10 दिन तक खेत में ही रहती, ताकि उसके डंठल सूख जाए, उसका वजन कम हो जाए और दाने निकालने में सहूलियत हो। तो फसल कट के खेत में ही रहती है, तो फसल तो हो गई, अच्छी हो गई, अच्छा उत्पादन रहा, लेकिन अभी खेत में फसल पड़ी हुई है और इस बीच में बहुत तेज बारिश हो गई या खेत में आग लग गई, अब आप क्या करेंगे? ये भी आपदा है, मतलब उसमें बकायदे दिया हुआ है, न्यूज में भी आपने सुना होगा कि फसल के कटने के 14 दिन के अंदर यदि फसल नष्ट हो जाती है तो उसका भी बीमा होगा। तो जो आपदा की परिभाषा है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। फिर प्रोविजंस क्या क्या किए गए हैं, जैसे एक जो मेजर प्रोविजंस है, मेजर प्रोविजंस में यही किया गया है कि जो फसल होती आम फसल उसके लिए 2% बीमा होगा देना, बीमा की राशि का 2%, यानी कि मान लीजिए कि 1,00,000 रुपए का बीमा कराया जा रहा है तो उसके 2,000 रुपए बीमा की राशि होगी। जो बागवानी है उसके लिए 5% रखा गया है, खरीफ की फसल के लिए 2% रखा गया है, रबी की फसल के लिए 1.5% रखा गया है, और इसका कुछ हिस्सा जो बीमा की राशि होगी उसका कुछ हिस्सा किसान देगा, बचा हुआ बची हुई जो राशि होगी उसकी आधी राशि केंद्र सरकार देगी और फिर उसकी बची हुई आधी राशि राज्य सरकार देगी। इस तरह से डिवीजन किया गया है। और अगर आप स्पेशल आरडीओ में मैच करेंगे तो आपको बिल्कुल इसी एग्जैक्ट तो यही डिवीजन नहीं है, लेकिन वहां भी अमेरिका और चाइना में भी आपको यही मिलेगा कि किसान थोड़ा सा हिस्सा देता है और उसका जो मेजर हिस्सा होता है वो सरकार देती है। और बहुत स्वाभाविक सी बात है फ्रेंड्स कि अगर बीमा आप कर देते हैं और यहां सरकार को पैसा देना पड़ेगा, देखिए सरकार का जो पैसा है वो पब्लिक का पैसा है, तो जो यहां पैसा देना पड़ेगा तो बट नेचुरल है कि सरकार फिर खासकर कृषि उत्पादों पर जो सब्सिडी दी जा रही है उन पर फिर अपनी पॉलिसी बदलेगी, तो सब्सिडी का पैसा वहां बचेगा और यहां पैसा लगेगा और ये किसानों को एक ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसीलिए इसमें फिर से बार बार हमारे कृषि मंत्री ने भी यही कहा है कि कम प्रीमियम पर बड़ा बीमा। तीसरी चीज सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई किया गया है पूरे के पूरे बीमा की जो सिस्टम होगा उसको सरल बना दिया गया है ताकि किसान इसकी ओर आकर्षित हो सकें और इसे अपना सकें। तो मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला सब्जेक्ट है, तो इस पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए विशेष तौर पर मैंने बहुत विस्तार के साथ इसके दूसरे एंगल पर आप लोगों को अलग अलग एंगल पर बात की है। मेरी एक सलाह आप लोगों को और होगी वो ये कि बेहतर होगा, बहुत से मेरे जो लिसनर हैं श्रोता हैं वो तो ऑलरेडी गांव में रहते हैं तो उनको तो कृषि व्यवस्था के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी है, बल्कि जो शहरों में हैं जो महानगरों में हैं जिन्होंने कृषि व्यवस्था के अभी तक दर्शन नहीं किए हैं केवल किताबों में पढ़ा है, बेहतर होगा कि एक दिन बना लीजिए टूर का प्रोग्राम, पिकनिक का प्रोग्राम और जाइए गांव में, देखिए कि कैसे खेती होती है, गांव वालों से थोड़ी सी बात कीजिए, उससे क्या होगा कि आपके अंदर अपनी तरफ से विजन्स आएंगे, विचार आएंगे और फिर आप देखेंगे कि कैसे कृषि अर्थव्यवस्था को समझने में आपका जो परसेप्शन है वो चेंज हो गया है और आपके दिमाग में नए नए विचार आने लगेंगे। एक ही दिन की बात है, करके देखिए, हो सकता है कि आपको मजा आने लगे, फिर आप दूसरी चीजों के लिए भी इसी तरह के कुछ उपाय करने लगे। मित्रों जो दूसरी खबर थी वो भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट खबर है और वो ये है कि बराक ओबामा जी ने अपने अंतिम, उनका वर्ष चल रहा है कार्यकाल का, लास्ट ईयर है उसका, अंतिम संबोधन दिया है और उस संबोधन में उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही है वो ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खासकर जो आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए हैं, सीधे सीधे उन्होंने शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, तो जब तक अलकायदा और आईएसआईएस पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं होगा तब तक दशकों तक इस क्षेत्र में अस्थिरता बनी रहेगी और विश्व को भी इसका खतरा रहेगा। और नाम का उल्लेख किया है दो राष्ट्रों का, सीधे सीधे पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान की बात हमारे लिए ज्यादा मायने इसलिए रखती है क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान में वार्ताओं का दौर चल रहा है, तो डेफिनेटली जो यूएस के प्रेसिडेंट ने ये बात कही है तो पाकिस्तान पर फिर से एक नैतिक दबाव हुआ है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से पठानकोट के एयरबेस पर जो आतंकवादी हमला हुआ है उसको लेकर के वो लगातार चिंतित है और कदम भी उठा रहा है। और यही वह स्थिति होगी जब पाकिस्तान के साथ भारत वार्ता के लिए आगे भी आएगा। उसने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान पर लगातार दबाव बढ़ रहा है और अफगानिस्तान में तो अड्डे है ही हैं। मित्रों, एक बहुत अच्छी खूबसूरत फिल्म आई थी, हालांकि ये 10 साल लगभग 10 साल पुरानी फिल्म है, वो है खुदा के लिए। अगर आपको देखने को मिले, हिंदी में भी है ये खुदा के लिए। फिल्म में यही दिखा, आपको पूरे वो बॉर्डर दिखाई देंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, जहां पर इस तरह के आतंकवादी अड्डे हैं, जो वहां प्रशिक्षण हो रहा है और किस तरह से वो वहां के लोगों को डरा और धमका कर रखते हैं। उस फिल्म में इसका बहुत अच्छी तरीके से खुलासा किया गया है। इसके बाद एक जो दूसरे अगली इंपॉर्टेंट खबर थी मित्रों, वो केरल को लेकर के थी कि केरल ने अब अपने को संपूर्ण प्राथमिक शिक्षा राज्य घोषित किया है। मतलब वहां की जितनी भी पॉपुलेशन है, उस 100% पॉपुलेशन की जो एजुकेशन है, मिनिमम 5th क्लास तक हो गई है। और केरल ही भारत का पहला राज्य था जिसने आज से लगभग मैं समझता हूं कि 15 साल पहले अपने आप को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया था। 100% लिटरेसी, उस समय 100% लिटरेसी की बात थी, और अब जो है वो 100% प्राइमरी एजुकेशन, एजुकेटेड स्टेट की बात है। और इसका सच पूछे तो केरल में जो आपको एक अलग तरीके की अर्थव्यवस्था दिखाई देगी, डेवलप्ड थोड़ी जैसी दिखाई देगी, या और जो दूसरे परिवर्तन दिखाई देंगे, उसका बहुत बड़ा श्रेय वहां के एजुकेशन को जाता है। मित्रों, एक और छोटी सी खबर थी कि 1971 में भारतीय जो सेना थी, उसका जिन्होंने पूर्वी कमान का जिन्होंने नेतृत्व किया था, JFR जैकब जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनका निधन हो गया है। थोड़ा सा नाम आपके दिमाग में होना चाहिए कि लेफ्टिनेंट JFR जैकब, जो पूर्वी सेना के हमारे कमान थे, लेफ्टिनेंट जनरल रहे थे, वो अब नहीं रहे। तो नाम आपके दिमाग में हो, क्योंकि दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में इस तरह के कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो मित्रों, आज के न्यूज के बारे में इतना ही। न्यूज पेपर्स की क्लिपिंग्स आपको नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल होंगी, आप सब उसे बहुत अच्छे से देख लेंगे। खासकर प्रीतिश नांदी का जो दैनिक भास्कर का लेख है, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वो जो लेख प्रोवाइड किया जाता है मित्रों, वहां आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, लेकिन वहां एक भाषा मिलेगी आपको, एक लिखने का अंदाज मिलेगा, एक रिदम मिलेगा, कला मिलेगी। वो आपके भाषा को विकसित करने में और मांझने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, इसलिए प्रीतिश नांदी का लेख आप इस रूप में जरूर देखें। और भास्कर में आपको फसल बीमा योजना के बारे में एक एडिटोरियल कमेंट मिलेगा, तो उसको आप सामान्य रूप में देखें। और ज्यादा अच्छा होगा कि अभी आपको फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जो कुछ भी सामग्री मिलती है, उनका थोड़ा सा संग्रहण भी करते चलें, हाथों हाथ उनके पॉइंट्स भी नोट करते चलें और संग्रहण भी करते चलें, तो इससे आपकी रिचनेस उस पर आ जाएगी उस टॉपिक के बारे में, और आपकी पकड़ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मित्रों, अब इसी के साथ ही मैं आज के इस डेली ऑडियो को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।